Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आज मैं एक न्यूज़पेपर देख रहा था, उसमें एक कॉलम आता है कितना अजीब है ना, और इस कॉलम के अंतर्गत सचमुच बहुत ही विचारणीय बातें दी जाती हैं। मुझे लगा कि आज आपके साथ भी मैं वो शेयर करूं। उसमें से पहली बात ये थी कि यदि हमें 20 रुपए किसी गरीब को देना हो तो हम कितना आनाकानी करते हैं, लेकिन वहीं यदि वो 20 रुपए हमें किसी होटल में किसी बैरे को टिप के रूप में देना हो तो हमें लगता है कि ये 20 रुपए बहुत कम है, ज़्यादा देना चाहिए ताकि मेरा भी कुछ नाम हो या वो भी मुझे धन्यवाद अदा करें। वैसे ही वैलेंटाइन डे का इंतज़ार हम पूरे वर्ष करते हैं, लेकिन मदर्स डे कब आया और कब चला गया ये हमें पता ही नहीं चलता। पूरे दिन मेहनत करने के बाद जिम जाना हमें सहज लगता है, लेकिन यदि माता पिता के पैर दबाने हो तो वहीं हम आनाकानी करनी शुरू कर देते हैं। जिम जा सकते हैं लेकिन शायद माँ बाप के पैर दबाने में हम थकान महसूस करते हैं। इसी प्रकार 3 मिनट परमात्मा को याद करना कितना कठिन प्रतीत होता है, लेकिन 3 घंटे की फिल्म देखना कितना सहज और आसान लगता है। सचमुच विचारणीय बात है मित्रों कि जहां हमें वक्त देना चाहिए, जहां से हमें दुआएं मिलती हैं, जहां सचमुच आवश्यकता है हमारी, हमारे पैसों की, हमारे साधनों की, हमारे वक्त की, वहां तो हम वक्त नहीं देते, जिससे शायद हमारा भविष्य बहुत सुंदर बनता है। लेकिन वहां हम वक्त जरूर देते हैं जहां से हमें क्षणिक प्राप्ति होती है या प्राप्ति कई बार नहीं भी होती है। इन पे हमें अवश्य विचार करना चाहिए, क्योंकि जीवन वास्तव में यदि हमें श्रेष्ठता की ओर ले चलना है तो हमें कर्म भी तो श्रेष्ठ करने होंगे। जैसा कि कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि कर्मों की श्रेष्ठता बहुत मायने रखती है। कहा भी गया है गीता में कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। और वैसे भी कहा जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा फला फला तेरा नाम रहेगा। तो नाम वास्तव में हमारे कर्मों के कारण ही तो होता है। तो हम देखें कि कहाँ हम अपना वक्त लगा रहे हैं, जहाँ आवश्यकता है वहाँ, या जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ क्षणिक प्राप्ति के लिए। चिंतन लगातार आपको समाधान देता रहता है और हमें विश्वास है आप इन पे चिंतन करते हुए सुंदरता की ओर, श्रेष्ठता की ओर लगातार बढ़ रहे होंगे। ऐसे सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं प्रातः जी का। प्रातः जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है।
थैंक्स।
इन अजीबो गरीब हालातों के बारे में आपकी टिप्पणी।
देखिए, मनुष्य की रुचि की बात है कि उसको माँ के पैर दबाने में रुचि है या जिम जाने में रुचि है। वो ये भी सोच सकता है माँ तो रोज ही ऐसे कहती रहती है, थकी थकी रहती है, मुझे भी तो अपना कुछ करना है ना, शौक पूरे करने
या बॉडी बनानी है।
तो ये बात है, फिल्म देखना उसकी एक ऐसी रुचि है जिसमें वो मनोरंजन फील करके अपने को फ्रेश महसूस करता है। ये मनुष्य की मेंटेलिटी की बात है, लेकिन मनुष्य को कर्तव्यपरायण अवश्य होना चाहिए। और मैं यहाँ इतना कहूँगा कि अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपनी खुद की रुचि को छोड़कर, जहाँ परोपकार की बात हो, जहाँ हमारे कर्तव्य परायणता की बात हो, जैसे माँ के लिए हमारा कर्तव्य है, उसके लिए हमें सब कुछ छोड़ना भी पड़े तो छोड़ देना चाहिए, इस पे विशेष ध्यान देना ही चाहिए।
बिल्कुल। वैसे ही ब्रदर जी, एक बात की परमात्मा को 3 मिनट याद करना बड़ा ही दुष्कर काम हो गया है आजकल के लिए। हाँ, 3 घंटे की मूवी बड़े आनंद से हम देखते हैं, रुचि की तो बात है, लेकिन यहाँ रुचि कैसे पैदा की जाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
ये बहुत जरूरी है, क्योंकि परमात्मा को न केवल याद करना है, लोग ये भी सोच लेते हैं क्यों याद करें, अभी अगर ज्ञान मिल गया तो भी लोग सोचते हैं वो पिता है तो क्या याद करना बार बार। लेकिन उसके स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करने से उसकी एनर्जी हमें प्राप्त हो, हमें उसका प्रेम मिलेगा, हमारी मानसिक थकान दूर होगी, माइंड वाइज हम बहुत पावरफुल बनेंगे, बड़े पॉजिटिव बनेंगे, जिसके जीवन में बहुत आवश्यकता है। तो पहली चीज तो ये, जैसे हम भोजन को या चाय पानी को महत्व देते हैं ना, मान लो हमें प्यास बहुत लगी है तो हम ये नहीं सोचेंगे बहुत बिजी हैं, छोड़ो 1 घंटे के बाद पी लेंगे, वो महत्ता है उस समय। इसी तरह हम ये समझ लें कि हमें अपने कार्यों को सफल करने के लिए, अपने जीवन की यात्रा को सुखी बनाने के लिए, या किसी भी फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति की बहुत जरूरत है। इस बात को लोग बहुत कम समझ रहे हैं कि बौद्धिक शक्ति के साथ मानसिक शक्ति भी बहुत बड़ी चीज है। जैसे किसी गाड़ी के दो पहिए, कार में मान लो चार पहिए हैं और एक ही पंचर हो जाए तो व्यक्ति ये तो नहीं कहेगा एक ही तो हुआ तीन पे चला लें। ऐसे ही मन और बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य, उसकी अपनी मानसिक स्थिति टोटल, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं जीवन के लिए। इस पे ध्यान देना, इसके लिए समय देना, ये उतना ही आवश्यक है जितना भोजन करना या चाय पीना या पानी पीना। बहुत प्यास लगी हो पानी पीना
जी,
इसके महत्व को समझे अगर मनुष्य तो इसके लिए समय देगा। पर अरुचि तब भी पैदा हो जाती है जब उसका कंसंट्रेशन नहीं होता। इसके लिए कुछ चीजें जो हम पहले भी चर्चा कराए हैं, हमें कुछ व्यर्थ की बातें छोड़ देनी होती हैं और एक 10-10, 15-15 मिनट का समय निकालकर अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए 10 मिनट किसी के लिए बड़ा समय नहीं है, और एक बार यदि उसको सुख मिलने लगा तो वो सुख उसे आकर्षित करेगा और वो बैठेगा ही योग अभ्यास में। हम बहुत सारी टेक्निक पीछे बताए हैं, उनको करने से ये 3 मिनट क्या 10 मिनट मनुष्य आराम से बिता सकता है। और तब उसे लगेगा कि यहाँ मानसिक स्थिति अच्छी होने से कर्म कितना अच्छा होता है।
बिल्कुल प्रति जी, जैसे यहाँ एक 3 घंटे की मूवी में बहुत ज्यादा उसको मसाला मिलता है, उसकी एकाग्रता पूरी की पूरी बनी रहती है। योग को भी क्या ऐसे फिल्म की तरह बनाया जा सकता है कि बहुत रुचिकर हो, बहुत मनोरंजक हो, बड़ा मजा आ रहा है और 3 घंटे क्या मैं 6 घंटे भी बैठ गया।
इसमें योग को जैसे शिव बाबा ने अपने महावाक्यों में कहा कि इसके साथ एक शब्द जोड़ेंगे, याद की यात्रा। ये यात्रा है हमारी, तीनों लोकों की, चारों युगों की, हमारे संपूर्ण स्वरूपों की, उसको एक फिल्म की तरह हम देख सकते हैं। तो सचमुच ये बात बहुत अच्छी है, उसके लिए हमें बहुत आनंदकारी फीलिंग होगी तब कि कैसे हम परम धाम से सतयुग में आए थे। जस्ट फिल्म देखने लगेंगे, आत्मा ऊपर से उतरी है, गोल्डन एज में आ गई, देव स्वरूप में है, क्या है वहाँ चारों ओर जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। अथा धन संपदा, अथा सुख शांति प्रेम, जन्म लिया, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, उतरते हैं त्रेता में आ गए, द्वापुर में, फिर कैसे कैसे नीचे आए और अब हम कहाँ हैं। अब पुनः हमारा परम पिता हमें ले जाने के लिए आया, चलो बच्चे हो तुम अपने घर को तो भूल ही गए हो। अब ये पार्ट तुम्हारा पूरा होता है, बहुत खेल कूद कर लिया, सुख दुख सब ले लिया, अब चलो मेरे साथ। तो जैसे हम आत्मा फिर उड़ के बाबा के साथ जा रही है, इसको एक फिल्म की तरह देखने लगे तो सचमुच ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें मनोरंजन होने लगेगा और नई नई प्राप्तियों का अनुभव होगा। जैसे बताया ना आपने कि फिल्म में 3 घंटे में उसे कुछ जानकारी मिलती है या कुछ बढ़ता है उसके अंदर, योग अभ्यास से बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा हो जाता है, बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। और हम हमेशा कहते हैं कि जो कार्य मनुष्य 1 घंटे में करता है वो आधे में पूर्ण कर सकेगा, जो निर्णय लेने में उसे बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं वो 1 सेकेंड में ले पाएगा, और उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी, उसका तन भी पॉजिटिव माइंड होने के कारण हेल्दी रहेगा और वो ज़्यादा काम कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात ये, वो स्ट्रेस फ्री रहेगा, वो दूसरों को प्यार दे सकेगा, उसके परिवारों में जो समस्याएं हैं उसका समाधान उसे साफ साफ दिखाई देगा। इसलिए इसके जब फायदे उससे महसूस होंगे तो रुचि बढ़ेगी और वो इसमें समय देगा और लगेगा कि 3 घंटे की फिल्म में तो एक छोटी सी स्टोरी का ज्ञान मिला। हो सकता कोई निगेटिव बातें मिली हों, कुछ पॉजिटिव मिली हो, कुछ चीज़ों ने वैराग दिलाया हो मन में, कुछ चीज़ों ने नफरत दिलाया हो किस चीज़ के लिए, ये लोग सब ऐसे ही होते हैं, गंदे लोग हैं, छोड़ो इसे। लेकिन योग अभ्यास से एक बहुत ही सुंदर अनुभूति होगी, जो ज्ञान मिलेगा जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसकी महत्ता को यदि जान जाए व्यक्ति तो इसमें वक्त देगा और साथ ही वैसे ही एंजॉय कर पाएगा जैसे कि एक मूवी को एंजॉय करता है। दादा जी, कुछ पत्र हमारे पास आए हुए हैं, पत्र आते ही मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि आजकल पत्र बहुत कम लिखते हैं लोग। भ्राता जी, ये पत्र हमें अशोक घेवड़े जी ने पुणे से भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि परमत, परचिंतन और परदर्शन से मुक्त कैसे हुआ जाए। यद्यपि बड़े ही आध्यात्मिक शब्द हैं ये, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है।
देखिए तीनों ही शब्द पर हैं, माने पराए हैं
जी, अपने नहीं है।
परमत, परचिंतन, परदर्शन, मनुष्य को एक आदत पड़ गई है दूसरों को देखने की, वो ऐसा कर रहा है, हम भी ऐसा करें। वो ऐसे धन कमा रहा है, हम भी ऐसे कमाएं। वो ऐसा खा पी रहा है, हम भी तो ऐसा ही खाए पिए। दूसरों को देखना, फिर दूसरों के अवगुण देखना, उसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है, फलाना व्यक्ति ऐसा है, फलाना ऐसा है। उसको अच्छे लोग कम दिखाई देते हैं, प्रदर्शन महान व्यक्तियों का भी किया जा सकता है, भगवान का भी किया जा सकता है, देवकुल की महान आत्माओं का भी किया जा सकता है, पर वो नहीं होता उनसे, वो दूसरों की बुराइयां देखते रहते हैं। अभी ये सब देखने से मन पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं उसका बैड इफेक्ट हमारी कॉन्शियसनेस पर आता है। पर चिंतन, कईयों को दूसरों के बारे में चिंतन करने की बड़ी आदत पड़ी होती है, नेताओं के बारे में चिंतन करना, आस पड़ोस वालों के चिंतन करना, अपने फ्रेंड सर्किल के बारे में चिंतन करना, करते ही रहते हैं। और वो भी निगेटिव चिंतन होता, अच्छा चिंतन वहाँ भी नहीं होता है, उसका इफेक्ट भी हमारी इनर कॉन्शियंस पर बहुत बुरा पड़ता है। हमारी इनर चेतना, हमारा इनर विवेक उससे बुरी तरह प्रभावित होता है। और एक और बात, जब हम दूसरों में कुछ देखते हैं तो एक सूक्ष्म चीज़ है, उनकी बुराइयों को मानो हम ग्रहण भी करते हैं। दूसरों में अवगुण देखते हैं तो हमारी खुशी नष्ट हो जाती है, हमारा अपना चिंतन समाप्त हो जाता है। मनुष्य के लिए बहुत बड़ी उसकी प्रॉपर्टी है, मैं कहूँगा बहुत बड़ी निधि है स्वचिंतन, श्रेष्ठ विचार। लेकिन इन सब चीज़ों के कारण परचिंतन और प्रदर्शन, वो जो एक क्रिएटिव एनर्जी है मनुष्य के अंदर, अच्छे विचार क्रिएट करने की पावर है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, लोप होने लगती है। पर मत, मनुष्य दूसरों की राय लेता है, उसकी मत पर चल। किसी ने मान लो कहा, ये मंदिर वंदिर, ये पुजारी वुजारी, ये सब तो इनका धंधा है, क्या करोगे वहां जाके, छोड़ दिया जाना। किसने कहा, अरे ब्रह्मा कुमारियां, ये सब तो खाने कमाने के धंधे हैं, छोड़ो, छोड़ दिया वहां जाना। भगवान आता है, ये बहुत बड़ी बात सुनी। दूसरे कहा, अरे वो फलाना भी ऐसे ही कहता था, हमने जाके देख लिया, कोई भगवान भगवान नहीं होता है। ये सब लोगों को
मतलब वो उनकी बात मान के पास नहीं आते, देखते नहीं, उसी के अनुसार चलते हैं।
बस इससे बहुत नुकसान हो जाता है, प्रभु मिलन से वंचित, श्रेष्ठ मार्ग से वंचित। क्योंकि अच्छी मत देने वाले लोग बहुत कम हैं, बुरी मत देने वाले ज्यादा हैं, मार्ग से भटकाने वाले लोग ज्यादा मत देंगे, अच्छे कम। तो इन तीनों से हमें मुक्त होने के लिए स्वचिंतन करना चाहिए, अपने एक महान लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर स्लोगन है, अपने लक्ष्य को इतना महान बना लो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। बहुत ही सुंदर ये बात है। मान लो एक छोटा सा उदाहरण ले लें, हमें ट्रेन पकड़नी है, अब 7 बजे हमें ट्रेन पर जाना है, आधे घंटे का रास्ता है, हमारे पास 1.25 घंटा बचा है केवल। हम किसी स्पीड से चलते हैं, किसी स्पीड से तैयारी करते, चारों ओर देखते ही नहीं, रास्ते में लोग क्या कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है हमें ट्रेन पकड़नी है, मिस हो जाएगी,
आसपास की कोई चीजें दिखाई नहीं देती,
बिल्कुल दिखाई नहीं देगी हमें। यही बात यहाँ है, यदि मनुष्य एक लक्ष्य बना ले, सुंदर लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य, स्टूडेंट पढ़ाई का लक्ष्य, बिजनेस वाले बिजनेस का लक्ष्य, और मेनली स्पिरिचुअलिटी को अपना लक्ष्य बनाए, तो ये सब चीजें आपके पीछे छूट जाएंगी। और लक्ष्य बना ले, हम इन चीजों के लिए थोड़ा ही हैं, ये औरों को करने दो ये काम, हम तो स्वचिंतन करके अपने को महान बनाएंगे। ऐसे स्वचिंतन में जब मनुष्य रहेगा, अपने को देखेगा, तो दूसरों को देखना छोड़ देगा। दूसरों को देखने से मनुष्य अपने को देखना भूल ही जाता है। ये विधि अपनानी चाहिए,
मतलब खुद को देखें, खुद का चिंतन करें, दूसरों का नहीं। एक प्रश्न आता रहता है जिसमें कई लोग अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं कि राजनीति में क्या हो रहा है, खेल में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, और जब तक इसकी बात ना हो तब तक हम अपडेटेड तो अपने आप को महसूस ही नहीं करते, और सामने वाला भी कई बार महसूस करता है कि ये बंदा तो बिल्कुल किसी और ज़माने में रहता है, आज दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, उसकी जानकारी नहीं है। तो यहाँ ये जो परचिंतन वाली बात और स्वचिंतन वाली बात को कैसे पृथक
नहीं
करें,
वो अलग चीज हो गई। हमें संसार की जानकारियां प्राप्त करनी है, हम उसके लिए आधा घंटा एक घंटा दे सकते हैं, चर्चाएं भी कर सकते हैं, लेकिन टोटल वही चीज हमारे मानस पटल पर छाई रहे। आज भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया, वेस्ट इंडीज को हरा दिया, बहुत खुशी हुई, लेकिन कल किसी ने भारत को हरा दिया तो फलाना जो वो है ना प्लेयर, बिल्कुल बैट्समैन बेकार है, कहाँ कहाँ से इनको भर्ती कर लिया, ये सब पॉलिटिक्स भारत में बहुत चलती है। योगी लोग पीछे, सारा दिन छाया हुआ, मन भी उदास हो गया, भारत हार गया,
खाने में भी मजा नहीं आ रहा।
इससे बचना है, हार जीत ये सब होता रहता
है। ये देश प्रेम नहीं है क्या कि हार गए तो दुखी होंगे? तो
देश प्रेम ये है कि जो हार गए उन्हें नया एनकरेजमेंट दिया जाए, उन्हें गुड वाइब्रेशंस दिए जाएं और फिर से लोग तैयार हों कि ये हार सदा के लिए हमें जीत की ओर प्रशस्त करेगी। तो इन चीजों को जान अवश्य लें, जानने में समय नहीं लगता, लेकिन वो हमारे मन पर छाया रहे, वो हमारे कार्यों को भी इफेक्ट कर दे। और मान लो कोई दूसरा घर में कुछ और बात कर रहा तो उस पर गुस्सा भी करने लगे हैं। इन सब से बचेंगे, अपडेट करना, अपडेट रहना स्वयं को बहुत जरूरी है, सब जानकारी मनुष्य को होनी चाहिए, लेकिन हम उतना इन्वॉल्व उसमें ना हो जाएं कि और कार्य हमें छूट जाएं। तो हम इन चीजों का बहुत ध्यान दें कि ये चीजें हम जानकारी रखें। जानकारी रखना अलग चीज है, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी उतना हमें अच्छा होगा, लेकिन उनके व्यर्थ चिंतन में चले जाना, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, अब इसको बॉलिंग ऐसी करनी चाहिए,
पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए ज्यादा।
बहुत लोग सोचते रहते हैं ना, अरे बैट्समैन देखा कहाँ कंफ्यूज हो गया, कहाँ का कहाँ मार दिया, आउट हो गया। अब ये तो बेचारे वो वहाँ जो
एम्पायर ने गलत निर्णय दे दिया,
ये तो जो वहाँ फील्ड में है वही देखते हैं, सोचेंगे क्या गलती हुई कहाँ। तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा परेशान होना और इनमें टाइम देना उसकी जरूरत नहीं, इन्फॉर्मेशन लेना वो आवश्यक है।
बिल्कुल प्रथा जी, ये जो प्रदर्शन वाली बात है इस पे मैं एक और जानकारी आपसे चाहूंगा। ज्यादातर ये होता है कि हम दूसरों को जब हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि दूसरों का ही हम चिंतन करते रहते हैं, तो ये वाली जो एक आदत है स्वचिंतन की वो तो है नहीं हमारे अंदर, सारे दिन हम जो देखते हैं उसी का चिंतन चलता है। तो अब इस आदत को कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि ये गहरी आदत सी पड़ गई है, जो दिखा उसका चिंतन चलेगा, स्वयं का चिंतन कम होता है।
इसके लिए स्पिरिचुअलिटी परम आवश्यक है मनुष्य के लिए। जब मनुष्य आत्मदर्शन करने लगता है, परमात्म दर्शन करने लगता है, तो एक तो इन चीजों में रुचि कम हो जाती है, दूसरी चीज मान लो कुछ दिखता भी है तो हम उसे बहुत लाइटली देखते हैं। मान लो एक व्यक्ति बहुत क्रोध कर रहा है अपने घर में, तो हम उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, भाई चलो इनके घर में कुछ बात हो गई होगी, बेचारे क्रोध आ गया, शांत हो जाएगा, कोई बात नहीं। और अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम उसके बारे में चिंतन शुरू कर देते हैं, देखा ये व्यक्ति रोज ही क्रोध करता है, इसकी आदत पड़ गई, ये अपने घर को बिगाड़ रहा है, अनेक तरह का चिंतन इसमें होता है। स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत सुंदर चीज हमें सिखाई गई, सारा दिन न जाने क्या क्या दिखता है मनुष्य को, आंखें तो खुली हैं 24 घंटे, देखते हुए न देखना, एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। कुछ चीजें जो अनकंसर्न है, हमारा कोई लेना देना नहीं, उनको सुनते हुए न सुनना, देखते हुए न देखना। बहुत सारी चीजें हैं, टीवी पे डिस्कशन आते रहते हैं, चार लोगों को बैठाया हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, उस पर चर्चा हो रही, वो कहने वाले कह के भूल भी गए, सुनने वाले भूल गए, अब ये बाल की खाल निकाले जा रहे हैं, लोगों का चिंतन चल रहा है बहुत ज्यादा, इसने ऐसा कर दिया, उसने कर दिया, उस बात को यदि वहीं समाप्त कर दें लोग तो कितना अच्छा हो। मैं देखता रहता हूँ लोग एक एक बात को बढ़ा के समाज में जैसे टेंशन पैदा हो रही, इसलिए लोग चैनल बंद कर देते हैं, हम भी कर देते हैं, बेकार की बातें हो रही। ऐसी चीजों में रुचि न रखना ये परम आवश्यक है। बहुत सारी चीजें बेकार की हैं दुनिया में, जो लोग अपने स्वार्थवश अपने चैनल्स को चलाने के लिए या कुछ और दिखाने के लिए, कुछ हम भाई सच्ची इन्फॉर्मेशन दुनिया को दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं होती। बहुत चीजें ऐसी हैं दुनिया में, किसी ने कुछ कहा ठीक है, बता दिया, एक बार खत्म हुआ, ओम शांति, आगे बढ़ो। कुछ अच्छे काम भी तो मनुष्य को करने हैं, अगर मनुष्य इन चीजों में रहेगा तो अच्छे काम कब करेगा। तो बहुत चीजों को देखते हुए न देखना, बहुत बातों को सुनते हुए न सुनना, ये मनुष्य को अपनी मेंटेलिटी बनानी ही पड़ेगी। नहीं तो होता क्या है, छोटी बात का हवा, बहुत बड़ी बात कुछ भी नहीं, उसको एक सेकंड में समाप्त किया जा सकता है। इन चीजों से हमें बचना चाहिए।
बिल्कुल। और दूसरी बात, जहां तक रही ब्रता जी, एक तो हो गई कि बड़ी स्तर की बात, दूसरी बात आजकल यदि दूसरों को देखते भी हैं तो जैसे आपने एक बात कही कि हम विशेषताएं हमें दिखाई दें, लेकिन ज्यादातर लोगों में बुराइयां ही हैं, अवगुण ही हैं, हम वही देखते हैं और उसी का फिर चिंतन भी चलने लगता है। ये भी एक नेचुरल सी बात हो गई, और ये भी हम कहते हैं कि भाई जब उसमें है जो है वही तो दिखेगा ना, और हम यदि सोचते हैं तो हम उसके भले के लिए सोचते हैं या कहते हैं तो उसके भले के लिए कहते हैं, तो इस वाले बात को फिर हम कैसे समझें? क्या देख के उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए या फिर अपने आप को तटस्थ ही कर लेना चाहिए कि वो वैसा हम अपने स्वचिंतन में रहें?
अगर हम दूसरे के कल्याण के लिए, कुछ अच्छी बात कहते हैं या अच्छी बात सोचते हैं, दैट्स वेरी फाइन, बहुत अच्छी बात है। हम दूसरों को कहें भी अवश्य, अपने परिवार में भी, आस पड़ोस में भी, लेकिन कहने का तरीका बहुत सुंदर होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरों में हैं और रहेंगी, हम कहें या न कहें, कहने से बल्कि वो और गुस्सा करेंगे, तुम कौन होते हमें कहने वाले। ऐसी चीज़ों में जो साक्षी रहना, तटस्थ रहना, ये हमें खुद निर्णय करना होता है कहाँ हमें रिएक्ट करना है और कहाँ तटस्थ रहना है। इसका निर्णय करके हम बहुत अच्छी मनोस्थिति में रह सकते हैं, लेकिन हर चीज पे रिएक्ट करना इसकी जरूरत नहीं होती।
रति जी, व्यक्ति सारे दिन अपने में तो नहीं रह सकता, क्योंकि मैं एक सांसारिक प्राणी हूँ, सामाजिक प्राणी हूँ, मैं कोई ज्ञानी ध्यानी तो नहीं हूँ कि मैं भाई सारे दिन स्वचिंतन आत्मचिंतन में मग्न रहूँ। दूसरों को तो मैं देखता ही हूँ, दिख ही जाते हैं। चलिए मैं बुराइयां ना देखूं, या देखा तो मैंने सुधारने की कोशिश की जैसे आपने कहा, लेकिन मैं अच्छाइयां ही देखूं, सबके अंदर अच्छाइयां ही दिखें, क्या ऐसी भी संभावना है ताकि मेरे अंदर भी अच्छाइयां आ सके?
मनुष्य में स्वयं में जितनी अच्छाइयां होती हैं, उसे दूसरे में उतनी अच्छाइयां दिखाई देती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक महान व्यक्ति दूसरों की बुराइयों को भी अच्छाइयों के रूप में देखता है। एक बाप अपने बच्चे पर क्रोध कर रहा है, बाहर से देखने वाले को लगेगा ये बहुत क्रोध कर रहा है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति समझेगा इसका अपने बच्चे से बहुत प्यार है, वो उसे कुछ बनाना चाहता है, इसलिए वो उसे डांट रहा है। तो ये नहीं कि सब में अवगुण ही अवगुण है, नो डाउट, ये कलयुग का अंत है और सभी के अवगुणों के भंडार भरे हुए हैं, लेकिन गुण भी हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि एक अवगुण इतना प्रबल होता है जो सारे गुणों पे छाया रहता है, उन्हें दबा लेता है। बस यही बात होती है, इसलिए मनुष्य को दूसरे की बुराई दिखती है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा है लेकिन शराबी बन गया है, अब लोग कहते हैं बड़ा गंदा है, शराबी है, चुपचाप कह भी देते हैं, लेकिन है बहुत ईमानदार बेचारा, कभी किसी पे गुस्सा भी नहीं करता, शराब तो पीता है पर शांत पड़ा रहता है। तो देखिए ये भी चीजें, इसका अर्थ ये नहीं हम भी सीख लेंगे शराब पिए और शांत पड़े रहें, उससे तो डैमेज ही होता है बॉडी में।
उनकी अच्छाइयों को सीख,
अगर हम में बहुत अवगुण हैं तो हमें अवगुण दिखाई देंगे, हम में गुण ज्यादा हैं तो हम दूसरों के गुण देखेंगे, इसलिए हमें अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। और हम एक संकल्प ही रख लें कि गुण ग्राहकता भी एक बहुत बड़ा गुण है। सब में गुण देखने से, मान लो एक परिवार ही है उसमें 6 सदस्य हैं, अवगुण तो सब में होंगे, कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता होगा, कोई बात बात में इरिटेट होता होगा, कोई कामकाज करने में ढीला होगा, या कोई बहाने बहुत बनाता होगा, कोई ज्यादा खाता पीता होगा, कोई पैसे ज्यादा खर्च करता होगा, ये सब आजकल है। इस सब वैरायटी में ही हमें समरसता लानी होती है, तो घर में आपस में बैठे भी और उनकी जो बुराई है उसकी बहुत चर्चा करने से लोग सुधरते नहीं है, बल्कि उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं उनको हम जागृत करने का लक्ष्य रख लें। और सब में कुछ ना कुछ अच्छाई तो होती है, जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति बहुत शराब पीता है लेकिन उसके पीछे उसमें गुण भी बहुत होते हैं, लोग उसकी महिमा करते हैं कि भाई चलो शराब तो पीता है बेचारा किसी भी कारण से, लेकिन काम बड़े अच्छे अच्छे करता है, कोई भी इससे मदद मांगने चला जाए खाली हाथ नहीं लौटाता, हाँ भाई जो चाहिए बताओ क्या करता है। तो गुण ग्राहक दृष्टि हो जाए
जी,
बस इसमें यही कि हमें और हम अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। तो अवगुण तो सब में ही है, जिसको अपने अवगुणों का ज्ञान है वो अपने अवगुणों से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है, वो जिन बुराइयों को छोड़ना चाहता है, हम उन बुराइयों को अपने अंदर क्यों इकट्ठा करें। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे किसी ने झाड़ू लगा के अपने घर का कचरा एक थैली में डाल के बाहर रख दिया हो और हम बड़े प्यार से दौड़े गए और थैली उठा के अपने घर में ले आए।
बिल्कुल व्रत जी, परमत वाली बात पे भी एक प्रकाश आपसे चाहूंगा। वैसे हम ये कहते हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों से राय हमें अवश्य लेनी चाहिए, जो अनुभवी हैं, जिन्होंने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए हैं, तो यहाँ मत लेने की भी बात कही जाती है। और एक बात आध्यात्म में ये भी कही जाती है कि पर मत ना लो, क्या समझे?
नहीं, ये बड़ों की राय है, ये उनकी सजेशन है, ये उनकी एडवाइज है, ये तो लेनी चाहिए मनुष्य को, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, ये उनके लिए सम्मान भी होता है कि हम उनकी राय लेने लगे। लेकिन यदि हम एक विशेष बात पर इस समय ध्यान दें कि भगवान हमें मत दे रहा है महान बनाने की, टोटल प्रोग्रेस की, हमारी गति और सदगति की, हमारे वर्तमान जीवन को सुंदर बनाने की, तो अगर ईश्वरीय मत हम लेने लगे तो वास्तव में फिर किसी और की मत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन बड़े बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए और जो कामकाज हमारे चलते हैं, मान लो किसी का बिजनेस ही है, उसमें अपने बड़ों की अनुभवों की अनुभवी व्यक्तियों की राय लेना ही बहुत जरूरी होता है और ये फायदेमंद होगा। और कोई काम हम कर रहे हैं, हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस कार्य का विशेषज्ञ है, उससे राय लेना ये बहुत कल्याणकारी होता है। ये अलग चीजें हैं, लेकिन अपने जीवन की राय हम भगवान से लें जो श्रीमतब दे रहा है, तो परमत से भी हम बच जाएंगे, कहीं हमारा अहित भी नहीं होगा। और ईश्वरीय मत पर चलने से न केवल हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन वो रेस्पॉन्सिबल भी रहेगा।
बिल्कुल, मतलब ईश्वरीय मत ली जाए वर्तमान समय के अनुसार, और वो दूसरे मत जो भी हम ले रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, वो जरूर लिए जा सकते हैं। तथा जी, ईश्वरीय मत क्या है, ये भी एक बड़ा विषय हो सकता है, जरूर इस पे आपसे कभी जरूर चर्चा करेंगे। आज वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आज जो एक पत्र आया था हमारे पास, पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत, यद्यपि ये बहुत ही विशुद्ध, मैं कहूँगा आध्यात्मिक शब्द हैं, लेकिन आज हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि इनके विपरीत जो शब्द हैं वो हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं। ये तो बाहरी हैं, पर जैसे भाई साहब कह रहे थे, ये पराए हैं जो अब हमारे जीवन के अंग बन गए हैं। वास्तव में हमारे जीवन का अंग था स्वचिंतन, स्वदर्शन और ईश्वर की मत, जिसे श्रीमत कहते हैं। यदि हम पर दर्शन में सारा समय लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से अपना जीवन, अपना वक्त जाया कर रहे हैं। इसलिए एक लक्ष्य जरूर निर्धारित कर लें, क्योंकि जब लक्ष्य व्यक्ति का निर्धारित होता है तो ना तो वो दूसरों को देखता है, ना दूसरों का चिंतन करता है, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर ही बढ़ता है, और इसी में जीवन की सार्थकता है। और जहां तक रही बात दूसरों की मत लेने की, जरूर व्यवसाय में, कार्यक्षेत्र में हम मत लें, अपने बड़े बुजुर्गों से मत लें, लेकिन जीवन के लिए जैसे भ्राता जी कह रहे थे, ईश्वर की मत लेना बहुत जरूरी है। ये ईश्वरीय मत क्या है, इस पे भी सुंदर प्रकाश प्राता जी से लेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।